जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। वराह पुराण में एक कथा आती है। पूर्व कल्प में आरुणि नाम के एक तपस्वी ऋषि देविका नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार स्नान के बाद जब वे संध्या जप कर रहे थे, तब एक व्याध ने उनके वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से वहां पर प्रवेश किया। लेकिन ऋषि का दर्शन करते ही उसकी बुद्धि बदल गई। वह कहने लगा, ब्रह्मन, आपको देखते ही मेरी क्रूर बुद्धि चली गई। अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूं। ब्रह्म घाती समझकर मुनि ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी वह व्याध मन ही मन उन्हें गुरु मानते हुए वही रह के साधना करने लगा। एक दिन मुनि स्नान हेतु नदी के जल के भीतर गए, तब एक बाघ मुनि को मारने के लिए उद्यत हुआ। जल में निमग्न मुनि को खाने की इच्छा से बाघ जैसे ही मुनि की तरफ बढ़ा, वैसे ही व्याध ने बाघ को मार डाला। बाघ के व्याकुल शब्द को सुनकर मुनि के मुंह से ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह बाघ एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। मुनि के पूछने पर उसने अपने पूर्व जन्म की बात बताते हुए कहा कि मैं वेद धर्मशास्त्र ज्ञाता राजा दीर्घबाहु था। मैं घमंड के कारण प्राय ब्राह्मणों, संतों, महापुरुषों का अनादर अपमान करता था, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे बाघ होने का शाप दिया। जब मैंने उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी, तब मेरे उद्धार की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रत्येक छठे दिन मध्यान्ह काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और तेरे प्राण कंठ में आ जाएंगे, तथा उस समय ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तभी तेरा उद्धार होगा। प्राण संकट में डालकर भी व्याध ने बाघ से अपने गुरु की रक्षा की। गुरु आरुणि जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब व्याध कहता है, गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही पर्याप्त है, और मुझे क्या चाहिए? बेटा, पुण्य नदी में स्नान, भगवन नाम श्रवण व सेवा से तुम्हारा पाप नष्ट होकर अंतःकरण पवित्र हो गया है। अब तुम यही रहकर आगे की साधना करो। शिष्य को पाठ देकर आरुणि ऋषि वहां से कहीं चले गए। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह व्याध निराहार रहकर गुरुदेव आरुणि का ध्यान स्मरण करते हुए तत्परता से साधना में लग गया। उसके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी, पर ध्यान भजन का तेज उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी परीक्षा हेतु एक दिन मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। उन्हें देखकर व्याध ने उन्हें प्रणाम किया एवं अतिथि बनने के लिए निवेदन किया। संकल्प को साकार करने का सामर्थ्य देने वाली अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रिय संयम, तपोबल व्याध में कितना जागृत हुआ है यह जानने हेतु महर्षि ने जो गेहूं एवं धान्य से भली भांति सिद्ध अन्न खिलाने की अपेक्षा रखी। व्याध चिंता में पड़ गया कि इस एकांत में यह सामग्री मैं कहां से लाऊं। इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। व्याध ने उसे उठा लिया और भिक्षा मांगने के लिए वह जैसे ही जंगल के निकटवर्ती नगर की ओर जाने लगा, तभी वृक्षों में से एक के बाद एक वन देविया वहां पर आई, जिनके हाथों में स्वर्ण पात्र थे जो विविध दिव्यान्नों से भरे हुए थे। वन देवियों ने दिव्यान्नों से भिक्षा पात्र को भर दिया। व्याध वापस आया और उसने महर्षि से चरण धोकर भोजन हेतु आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। पुनः तपोबल की परीक्षा करने के लिए विचार से दुर्वासा ने पैर धोने हेतु नदी में जाने के लिए असमर्थता बताई। व्याध ने मन ही मन अपने गुरुदेव का स्मरण किया और देवी का नदी का भी स्तुति पूर्वक स्तवन किया, शरण ली। गुरु भक्त व्याध की सेवा सफल करने हेतु पाप नाशिनी देवी का नदी मुनि के आगे प्रकट हो गई। यह देखकर मुनिवर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर व्याध के श्रद्धापूर्वक दिए हुए अन्न को ग्रहण किया। महर्षि दुर्वासा ने व्याध को ब्रह्म विद्या, वेद और पुराणों का ज्ञान प्रत्यक्ष होने का आशीर्वाद दिया और नवीन नामकरण करते हुए कहा, तुम अब ऋषियों में अग्रगण्य सत्यतपा नामक ऋषि होगे। अब तुम्हारा पूर्वकाल का अज्ञान शेष नहीं रह गया। इस समय तुम्हारे अंतकरण में शुद्ध रूप अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं। मुने, इस कारण तुम्हें देव, वेद और शास्त्र भी भली भांति ज्ञात हो जाएंगे। संत दर्शन, गुरु निष्ठा, सेवा साधना व गुरु कृपा का कैसा दिव्य प्रभाव कि एक नृशंस व्याध ने ऋषियों में अग्रगण्य स्थान पा लिया।